ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तां कामयानां भगवान् उवाह यजसाम्पति तुष्टायां तोषापन्ना अजनय द्वादशात्मजा। भाषांतर और भावार्थ भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। यज्ञों के स्वामी भगवान ने बाद में दक्षिणा के साथ विवाह कर लिया, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए परम इच्छुक थी। उनकी इस पत्नी से उन्हें 12 पुत्र प्राप्त हुए। मेरे पीछे दोहराइए, यज्ञों के स्वामी भगवान ने बाद में दक्षिणा के साथ विवाह कर लिया, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए परम इच्छुक थी। उनकी इस पत्नी से उन्हें 12 पुत्र प्राप्त हुए। तात्पर्य, आदर्श पति पत्नी की तुलना सामान्य रूप से लक्ष्मी नारायण से की जाती है, और यह महत्वपूर्ण है कि वे लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण पति पत्नी रूप में सदैव सुखी रहते हैं। पत्नी को चाहिए कि वह सदैव अपने पति से संतुष्ट रहे, और पति को भी पत्नी से संतुष्ट रहना चाहिए। पंडित चाणक्य ने नीति श्लोक चाणक्य श्लोक में कहा गया है कि यदि पति पत्नी एक दूसरे से सदा संतुष्ट रहें, तो ऐश्वर्य की देवी उनके यहां स्वतः पदार्पण करती है। दूसरे शब्दों में, जहां पति तथा पत्नी में कोई मत भिन्नता नहीं है, वहीं लक्ष्मी का वास होता है और अच्छी संतान उत्पन्न होती है। वैदिक सभ्यता के अनुसार सामान्य रूप से पत्नी को प्रत्येक दशा में संतुष्ट रहने का प्रशिक्षण मिलता है, और पति से अपेक्षा की जाती है कि वह पर्याप्त भोजन, वस्त्र और आभूषणों से पत्नी को संतुष्ट रखे। जब वे परस्पर व्यवहार से इस प्रकार प्रसन्न होते हैं, तब उन्हें अच्छी संतानें प्राप्त होती है। इस तरह से संपूर्ण विश्व में शांति आ सकती है। किंतु दुर्भाग्य से इस कलयुग में आदर्श पतियों और पत्नियों का अभाव है, इसलिए अनुपेक्षित संतानें पैदा होती हैं, और आज के समय में संसार में न शांति है न संपन्नता। तो यहां भगवान दक्षिणा से विवाह करते हैं, उनका बयान है, और तत्वज्ञ दक्षिणा और भगवान का कैसे विवाह होता है वो कल हमने सुना। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि सामान्यतः पति पत्नी ये लक्ष्मी और नारायण का स्वरूप गिना जाता है। जैसे श्राद्ध क्रिया में भी पंडित जी लोग अगर नानी ग्रानी ग्रेट ग्रेट ग्रानी किसी का नाम पता नहीं होता तो लक्ष्मी और नारायण नाम से श्राद्ध करवाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि पति पत्नी लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है और यहाँ तो साक्षात लक्ष्मी नारायण की विवाह की बात है। तो आदर्श पति पत्नी का प्रभुपाद जी तात्पर्य में वर्णन करते हैं। आदर्श पति और आदर्श पत्नी अर्थात पति अपनी पत्नी को अच्छी तरह पालन पोषण करें। अर्थात प्रभुपाद जी कहते हैं कि उनको पर्याप्त भोजन वस्त्र और आभूषणों से पत्नी को संतुष्ट रखें। तो ये पति का धर्म हर हालत में पत्नी को सिक्योरिटी, हर पत्नी सिक्योर रहना चाहती है, संरक्षित कि उनको पर्याप्त भोजन और पर्याप्त रहना, कपड़े मकान वगैरह उनको सिक्योरिटी चाहिए क्योंकि ये स्वभाव है, स्त्रियों का स्वभाव है और होना भी चाहिए क्योंकि स्त्री अगर बाहर इन चीजों का उपार्जन करने लगेगी तो वो स्त्री स्त्री नहीं रहेगी और उनके स्वभाव से विरुद्ध काम होगा। तो ये सबका फोन बंद कर दीजिए, खाली घंटे कोई घंटा भी नहीं, आधा घंटा। तो कुटुंब का संस्कार स्त्रियों पर ज्यादातर निर्भरित रहता है क्योंकि वो अबलाएं हैं और उनका स्वभाव भी अबला का है, इसलिए स्त्री को चाहिए कि पति उनकी आवश्यकताएं पूर्ण करें और पति को भी ये चाहिए। तो पति का धर्म यहां बताया गया है कि चाणक्य पंडित को कोट करते हैं प्रभुपाद जी, और पति से अपेक्षा की जाती है कि वह पर्याप्त भोजन वस्त्र आभूषण पत्नी को, और पत्नी से जहां पति पत्नी में कोई मत भिन्नता नहीं, वही लक्ष्मी का वास होता है और अच्छी संतान उत्पन्न होती है। वैदिक सभ्यता के मुताबिक तो पत्नी भर्तुर शुश्रूषा, भर्तुर शुश्रूषा पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना, और पति का धर्म है उपार्जन करके पत्नी को सिक्योर खान पान घर, ये दोनों का धर्म होते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो कौटुंबिक संस्कार, कौटुंबिक प्रणालिकाएं जारी रहती है, तो उससे जो कुटुंब में शांति सुख शांति आती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जहां पति पत्नी में एक दूसरे में मेल जोल है और संस्कार है, संस्कारी बालक पैदा होते हैं और सारा समाज की व्यवस्था जारी रहती है। और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होगा कि वर्ण संकर प्रजा जन्मेगी, स्त्रियां बाहर घर से बाहर निकलेगी, काम धंधा नौकरी धंधा, और अपने पग पर खड़ी रहेगी, स्वतंत्र हो जाएगी, शादी। कई यंग गर्ल्स मुझे पूछती हैं कई बार कि मैं संन्यास लूंगी, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन वो घबरा जाती हैं कि शादी के बाद क्या होगा, क्योंकि आजकल तलाक और सो मेनी टॉर्चर लेडीज को, और अनवांटेड मैरिज, अनवांटेड सब कुछ, अनवांटेड जाए तो वर्ण संकर लुप्त पिंड उदक क्रिया, धर्म कुल नष्ट हो, कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे। कुल धर्म नष्ट होने पर वर्ण संकर प्रजा जन्मेगी, वर्ण संकर प्रजा का जन्म होगा तो सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो ये प्रभुपाद जी कहते पर्यट तात्पर्य में कि जहां पति पत्नी आपस में मेलजोल है, प्रेम है और प्रेम संपादित करके रहते हैं, तो वहां लक्ष्मी का वास होता है, वहां लक्ष्मी। और पति पत्नी भी नारायण, लक्ष्मी नारायण का स्वरूप। तो यह सामाजिक व्यवस्था तभी बनी रहेगी जब मैरिज इंस्टीट्यूशन, प्रभुपाद सेज मैरिज इंस्टीट्यूशन बनी रहे। तो मैं कल प्रभुपाद जी के शिक्षामृत में पढ़ रहा था गृहस्थों के नियम, तो बार बार प्रभुपाद जी इसमें लिखते हैं कि उपदेश देते हैं शिष्यों को हर लेटर में कि देयर शुड नॉट बी एनी क्वेश्चन ऑफ सेपरेशन आफ्टर मैरिज, अर्थात शादी हो गई, विवाह हो गया, बाद में कोई भी हालत में वो विवाह निभाना है, कोई भी हालत में, दुख में या सुख में, हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस, विवाह निभाना होता है। क्रिश्चियन ट्रेडिशन में भी यही होता है, यही नियम है कि कोई भी हालत में मैरिज बना रहे, शादी बना रहे, शादी विवाह बना रहे, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि शादी विवाह संस्कार। तो विवाह इंस्टीट्यूशन, प्रभुपाद कहते इंस्टीट्यूशन, मैरिज इंस्टीट्यूशन, अर्थात ये मैरिज इंस्टीट्यूशन समाज में होगी तभी समाज सुखी हो सकता है। तो इससे पहले, मैरिज इंस्टीट्यूशन से पहले, शादी में स्त्री और पुरुष कृष्ण भक्त होना जरूरी है, कृष्ण भक्त इससे पहले। इसलिए बचपन से ही कौमारम आचरित प्राग्न, एकांतिक भक्त, अनन्य भक्त, अनन्यता, कृष्ण की अनन्यता, दोनों में स्त्री हम, स्त्री पुरुष बालक बालिका दोनों में अनन्यता, कृष्ण की भक्ति होगी तो मैरिज इंस्टीट्यूशन सही हो ही जाएगी। तो अनन्यता बहुत जरूरी है, कृष्ण भक्ति की अनन्यता। और अनन्यता का अर्थ है श्री कृष्ण का शरणागत, श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करना, ये अनन्यता भगवान की जरूरत है, जरूरी है। और वेदों में, शास्त्रों में, नारद पंचरात्र में भगवान की अनन्यता की बात बताई गई है। वो अनन्यता जब आ जाए तब ये सब धर्म, कुल धर्म, सब धर्म सेकेंडरी, दूसरे स्टेप पर स्थान लेता है, सेकेंडरी हो जाता है। और भगवान की अनन्यता, श्री कृष्ण की अनन्यता, अनन्य भक्ति, भक्त, भक्ति और भगवान, तीनों में अनन्यता, और तीनों पर हमारा भक्ति भाव। तो ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, लक्ष्य है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य। तो विवाह में लक्ष्य क्या है? श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति। और ये भक्ति स्त्री अकेली नहीं कर सकती, पुरुष अकेला नहीं कर पा रहा है, ब्रह्मचर्य पुरुष अकेला ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधा संन्यास आश्रम ले सकता है, लेकिन ज्यादातर जो समझ है वो ये नहीं कर सकता डायरेक्ट संन्यास। इसलिए स्त्री और पुरुष विवाह संस्कार से जुड़े और आहिस्ते आहिस्ते क्षण क्षण श्री कृष्ण भक्ति का प्रैक्टिस करें, और वो प्रैक्टिस करते करते एक दूसरों के पूरक बने, एक दूसरों को हेल्प करें, और अंत्य नारायण स्मृति, अंत्य हमारी श्री कृष्ण भगवान में भक्ति हो, श्री कृष्ण में हमारी स्मृति हो, श्री कृष्ण हमारी गति हो। नारायण परा वेदा, नारायण परम ज्ञानम, नारायण पराग परम तप, नारायण परो धर्मो, नारायण परम गति। अंत में एक स्त्री और पुरुष विवाह संस्कार से एक दूसरों के पूरक होके अंत में हमें श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त बन के उनके धाम में वापस लौटना, ये हमारा लक्ष्य है। प्रभुपाद जी कहते हैं लेटर में बार बार कि मैरिज इज नॉट द लाइसेंस टू to get into sense gratification. विवाह ये कोई लाइसेंस नहीं कि हम काम सुख में हमेशा लगे रहें. ये विवाह का अर्थ नहीं है. विवाह का अर्थ है एक दूसरों का पूरक बनके श्री कृष्ण भक्ति में हम आगे बढ़े चढ़े. ये विवाह का अर्थ है. और वर्णशंकर प्रजा नहीं होगी अर्थात संस्कारी बालक पैदा होंगे. विवाह संस्कार, गर्भाधान संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, संस्कार से बालक में अलग अलग संस्कार से बालक में संस्कार पूरे जाते हैं. तो ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य ये नहीं है कि कुत्ते गधे की बराबर विषय सुख और विवाह को भी विषय सुख के ईट ड्रिंक एंड बी मैरी हु हैज सीन नेक्स्ट लाइफ. ये उद्देश्य नहीं है. उद्देश्य है कृष्ण, कृष्ण प्रेम. तो ये विवाह विवाह में विवाह का लक्ष्य है. हमें हर हालत में श्री कृष्ण भगवान की अनन्य भक्ति, और अनन्य भक्ति के लिए हमें भक्त संग, कृष्णा भक्ति जन्म मूल है साधु संग. कृष्ण भक्ति का मूल है साधु संग, और साधु संग का मूल है सुकृति, हमारे पुण्य कर्म सुकृत. सुकृत से ही साधु संग होगा. अगर हम सुकृत करेंगे तो साधु हमारी ओर आकृष्ट होंगे. हम पुण्य कर्म करेंगे, पुण्य कर्म वो नहीं जिसे हमें विषय सुख मिले, स्वर्ग मिले. पुण्य कर्म का अर्थ है कि वो पुण्य कर्म जिसे हमें साधु संत महात्माओं की सेवा सुनना वगैरह हमें मिले. तो सुकृत से, अनेक जन्मों के सुकृत से हमें साधु संग मिलता है, और साधु संग से हमें कृष्ण भक्ति जन्म मूल होए साधु संग, कृष्ण भक्ति का जन्म हमारे हृदय में होता है. और ये कृष्ण भक्ति का जो बीज हमारे हृदय में हमें मिलता है साधु संग से, उनको नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साभ्य करुणय श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय. हर रोज श्रवण एंड कीर्तन, हर रोज श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण भगवान का नाम का, लीला गुण रूप धाम का श्रवण एंड कीर्तन करने से हमारे हृदय में सोया हुआ कृष्ण प्रेम जागृत होता है. तो ये लक्ष्य है. और गृहस्थ आश्रम में हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें सर्पल विरक्ति और साध में आसक्ति, कृष्ण में आसक्ति, और हर पल हमें हमें नित्य ध्यान एग्जामिनेशन करना चाहिए कि क्या हम गृहस्थ आश्रम में कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं. ऐसा एग्जामिनेशन, नित्य ध्यान, सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए. क्योंकि मनुष्य जीवन का या तो विवाह का ध्येय एक है, और वो है श्री कृष्ण का प्रेम, कृष्ण की भक्ति, श्री कृष्ण के भक्त, भक्त की, गुरु की, वैष्णव की भक्ति, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए विकेबा, वैष्णव सेवा। तो ये ध्येय है, ध्येय शादी करना ये ध्येय नहीं है, शादी ये वर्णाश्रम है। वर्णाश्रम धर्म तब तक हमें बजाना है जब तक हम एकांतिक अनन्य शरणागत भक्त कृष्ण के न बने, जैसे सद्गुरु स्वामी प्रभुपाद, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, कई उदाहरण है। जैसे मनु भगवान के वंश में सारे बड़े 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 चढ़े भक्त, ध्रुव महाराज, तो ऐसे ऐसे भक्त बनना ये ध्येय है। तो जब हम ऐसे ध्येय, ऐसा ध्येय हमारा संपन्न हो जाता है तो बाद में ये धर्म वर्णाश्रम धर्म गौण हो जाते, ऐसा नहीं कि छोड़ देना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म, गोपियों ने लोक धर्म छोड़ा, वैदिक धर्म छोड़ा, वो अलग बात है, क्योंकि उन गोपियों की भक्ति कुछ और स्तर पर थी। तो जब तक हम अनन्य भक्त न बने तब तक ये विवाह जो इंस्टीट्यूशन है, मैरिज इंस्टीट्यूशन, उनमें योग्य व्यवहार बनाए रखना चाहिए। और वो भी विवाह 25 से लेकर 51 तक, 51 वृंदावन। प्रभुपाद जी कहते हैं कि 51 इज रिटायरिंग एज, वन मस्ट रिटायर एट द एज ऑफ 51। 51 में गृहस्थ को, वानप्रस्थ, गृहस्थ आश्रम छोड़ के वानप्रस्थ का अर्थ है तीर्थ पर्यटन, प्रचार पर्यटन, और घर छोड़ना, आना जाना, घर का लगा रहे ज्यादातर पर्यटन में, वन में, वानप्रस्थ, वन वृंदावन, महावन, बेलवन, वन में जहां कृष्ण भक्ति हम बहुत तीव्रता से कर सके। तो ये साथ में पति पत्नी साथ में वानप्रस्थ और 75 संन्यास, पति पत्नी संन्यास, तो ये वर्णाश्रम धर्म है। तो उसमें ये 25 साल बच्चे पैदा करो, उनको पढ़ाओ लिखाओ, शादी करवाओ, 51 हो जाएगा, बाद में आध्यात्मिक जीवन फुल टाइम। ऐसा नहीं कि 65 तक हम इंतजार करें। और लोग कई हैं जो 65 रिटायर होते हैं फिर से दूसरा बिजनेस शुरू करते हैं, रिटायर होकर दूसरा टायर लगाते हैं। अभी मुझे अनुभव हो गया, अभी मैं नौकरी खत्म हो गई, अभी कंसल्टेंट। ये ध्येय नहीं है, ये ध्येय नहीं है। अभी मैं परिपक्व नौकरी में मैं बराबर निष्णात हो गया, अभी और पैसा, और पैसा किसके लिए, किसके लिए? ध्येय है श्री कृष्ण की प्राप्ति, कृष्ण की प्रेम प्राप्ति, ये ध्येय है। तो वो 51 से शुरू होता है, गृहस्थ आश्रम 25 से 50। तो इसके लिए कितनी झंझट, कितना सारा, लेकिन अगर हम लक्ष्मी नारायण ऐसे हम ये गृहस्थ आश्रम जिए तो वो भी भक्ति है। तो ध्येय ये है, वर्णा गृहस्थ आश्रम का ध्येय यही है कि श्री कृष्ण के अनन्य भक्त, श्री कृष्ण की शरणागति। इसलिए वर्णाश्रम को पहले वर्णाश्रम रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु के पूछने पर कहते हैं कि जिंदगी का ध्येय वर्णाश्रम, वर्ण और आश्रम का धर्म का चुस्त पालन करना। तो चैतन्य महाप्रभु रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि वर्णाश्रम का अर्थ ही है कि सम सिद्धि हरितोषणम, अतः पुंभी निज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग सनुसित धर्म से सम सिद्धि हरितोषणम। वर्णाश्रम का अर्थ यही है कि भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना वर्ण और आश्रम से, धर्म का पालन करके श्री कृष्ण को संतुष्ट करना। तो गृहस्थ आश्रम भी ध्येय एक है, श्री कृष्ण को संतुष्ट करना। तो ये 25 साल का जो अवधि है वो भी उसमें भी कोई विषय सुख के लिए ये विवाह संस्कार, विवाह इंस्टीट्यूशन, गृहस्थ आश्रम ये नहीं है। कैसे हम भगवान कृष्ण को खुश करें, तो इसके लिए भक्ति, भक्त, भगवान। और 51 में हम वानप्रस्थ कंपल्सरी, क्योंकि ध्येय कृष्ण है और वानप्रस्थ बच्चों में, बिजनेस में, घर में आसक्त, तो ये आसक्ति से पुनरअपि जननम, पुनर्जन्म जार्य पार्य जात, फिर से चक्कर चालू। तो इसीलिए 51 में रिटायर होना ही चाहिए वानप्रस्थ। तो यह है पति पत्नी का लक्ष्मीनारायण का रूप। और जब गृहस्थ आश्रम में है एक दूसरों के पूरक बने। क्या पूरक? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने में एक दूसरों को हेल्प करें। और 51 पति पत्नी बराबर तैयार हो जाए कि घर छोड़ के श्री कृष्ण के आश्रय लें और वो आश्रय से वानप्रस्थ भगवान श्री कृष्ण की फुल टाइम संपूर्णतः समर्पित होके फुल टाइम भक्ति। वैसे 25 साल इसलिए रखा गया वर्ण गृहस्थ आश्रम कि ज्यादातर जनसंख्या स्त्री पुरुष के लिए, स्त्री पुरुष के बिना रह नहीं सकते, इसीलिए विवाह। लेकिन ध्येय एक है विवाह गृहस्थ आश्रम में श्री कृष्ण की भक्ति और श्री कृष्ण की प्रसन्नता और श्री कृष्ण का प्रेम। तो ये विवाह इंस्टीट्यूशन है। एनी क्वेश्चन? कोई सवाल? किसी को भी सवाल? यस प्रभु जी। हाँ जी। हाँ जी। इसके लिए क्या उपाय है? शादी जल्दी करो और जल्दी जल्दी बच्चे बड़े हो जाए। जल्दी जल्दी वर्णाश्रम। लेकिन अब ये पाश्चात्य देशों का, पहले तो अच्छा है कि 30 साल 35 साल में शादी करते हैं, वो तो अच्छा है। कहीं तो लोग शादी ही नहीं करना चाहते, आजकल लड़की लड़के शादी ही नहीं करना चाहते। इंग्लिश में बोलते हैं इफ काउ इफ मिल्क इज अवेलेबल इन द मार्केट वाई कीप ए काउ। ये पाश्चात्य लोगों के प्रोवर्ब है, अगर दूध बाजार में मिल रहा है तो गाय रखने की जरूरत क्या है। तो प्रभुपाद जी की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हरे कृष्ण संस्था इस कौन से जगत का कल्याण हो रहा है। बाकी पाश्चात्य की हवा, पश्चिम देशों की हवा सब जगह फैल रही है और मैं कुछ नहीं कह सकता। भागवत ने पहले ही कहा है प्रायेण अल्प आयुष्य कलो अश्विन युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता, कलयुग में। और कहा है 12वें स्कंद में कि लावण्य केश धारणम, बड़े बड़े लंबे बाल रखेंगे और विवाह कोई करेगा नहीं, कुत्तों गधों की तरह सब कुछ। तो ये कलयुग का प्रभाव है और जल्दी जल्दी आ रहा है, जल्दी जल्दी आ रहा है। तो उसके लिए एक ही उपाय है, वो श्रील प्रभुपाद एंड उनकी संस्था चैतन्य महाप्रभु एंड चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन। 30-35 करेंगे शादी, लेकिन शादी करें वो ही तो अच्छा है, अभी तो यही समझो। और क्या करें, स्त्री बच्चे बालिकाएं या गर्ल्स इन इंग्लिश, वो भी एम ए बी ए पीएचडी करती है और एजुकेशन सब एजुकेशन लेती है, तो उनको एजुकेशन वाला लड़का चाहिए। और जितना एजुकेशन लड़की लोग लेगी उतना उनका विवाह 30 साल बाद उसके बाद। तो ये सब सारा समाज स्त्रियों के लिए ना दीक्षा की जरूरत है, ना शिक्षा की, ना स्कूल की। अगर स्त्री पीएचडी और मास्टर सब मास्टर डिग्री लेने लगे, आजकल तो सब एवरी गर्ल्स एंड एजुकेशन इज ऑल्सो फ्रीली अवेलेबल नाउ डेज विच इज गुड इन ए वे, बट शादी हो जानी चाहिए 20 साल मैक्सिमम स्त्री की आयु। वैसे तो 16 साल हो जाए तो अच्छा है, लेकिन चेंज यस शादी भोग है। आगे बोलिए। हाँ और देखो, प्रारब्ध आप बदल सकते हो। अगर कुमार अवस्था से ही अगर आपने भक्ति शुरू की तो कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा तेषाम हम समुद्धर्ता मृत्यु संसार भवामी न चिरात पार्थ मैया आवेशित चेतसा, ये आपका भाग्य बदलते हैं, प्रारब्ध कर्म बदलता है। तो संस्कार डालो पहले से, 5 साल से लड़की लड़के में संस्कार डालो, उनका भाग्य बदल जाएगा। लेकिन आजकल पढ़ो पढ़ो उनके पीछे माँ बाप सब 100% माँ बच्चों के पीछे पढ़ाई में पड़ी रहती है ना। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, घर आके माँ पढ़ाती है और शाम को ट्यूशन चलता है। सो मच टॉर्चर। और उनको भगवान क्या है वो न तो सिखाया जाता है न प्रैक्टिस किया जाता है। स्कूल में भेजो, टिफिन बनाओ, स्कूल जाओ, भगाओ और बस में बैठाओ और बस में लेने जाओ। और जितना स्कूल के पीछे माँ बाप प्रेशर करते हैं उतना भक्ति बालक को दी जाए, लेकिन उल्टा 0 भक्ति एंड संपूर्ण एजुकेशन के लिए, मंडेन भौतिक एजुकेशन के लिए कब प्रारब्ध बदलेगा? प्रारब्ध तब बदलेगा जब आप कौमारम आचरित प्राग्नो, जब दादा नाना नानी दादा दादी हाथ पकड़ के बच्चे को मंदिर ले जाएंगे। अभी नाना नानी नहीं जाते और सारे मंदिर ही बंद हो गए, संस्कार कहाँ पड़ेगा, भाग्य कहाँ बदलेगा? मैरिज इंस्टीट्यूशन इस भोग नहीं है, भोग के लिए नहीं है मैरिज इंस्टीट्यूशन। ना अर्थो अर्थाय कल्पते, धर्म से ही एकांतस्य काम लाभाय ते, काम लाभाय ते स्मृत नहीं है, अपवर्गस्य धर्म से अपवर्गस्य न अर्थ अर्थाय कल्पते, धर्म से एकांतस्य काम लाभाय ते सुप्त। काम लभन्ते, विवाह का अर्थ काम नहीं है, विवाह का अर्थ है एक दूसरों का पूरक होके भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए 51 में हम पूर्ण 100% भक्ति प्रैक्टिस करें। भाग्य की बात इसमें कहा है, और भाग्य बदल सकते हैं जैसे मैंने कहा। और कोई सवाल? यस प्रभु। हाँ, शरणागति 6 प्रकार की होती है। और मेरा समय हो गया है, मैं आपको इनके बाद शरणागति है 6 प्रकार की, जो भक्ति विनोद ठाकुर ने शरणागति सॉन्ग भी लिखी, शरणागति नामक प्रार्थनाएं लिखी है सॉन्ग के फॉर्म में। शरणागति है अनुकूलन संकल्प प्रतिकूलन वर्जनम रक्षा इति विश्वासो गोपृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप काल्पन्य सर्वविधा शरणागति। तो मैं आपको ये लेक्चर बंद करके थोड़ा डिटेल में कहूँगा। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवताम की, वैष्णव भक्त वृंद की, राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की, श्री कृष्ण बलराम की, श्री गौर निताय की, वृंदावन धाम की, वैष्णव भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदी।